हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लावान्या के घर पर दिव्याना और लावान्या साथ थीं। विधिक के घर रखे डिवाइन्स के जरिए उन्होंने उसके घर चल रही सारी बातों को सुना, जहां उन्हें रॉबिन के गोली लगने की बात पता चली। वहां जो भी हो रहा था उसको सुनने के बाद दोनों ही बहनें सकते में थीं। वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसने उन आदमियों की जमानत करवा दी जिन्होंने सारा इल्ज़ाम अपने सिर लिया था। दत्त सर कब से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें एजेंसी की सेल में लाकर पूछताछ की जा सके। लावण्या गुस्से में बोली। उसकी बात सुनकर दिव्याना ने कहा, तुम्हें अभी भी उन सब की पड़ी है? मुझे उसके घर जाने में डर लग रहा है, कहीं गुस्से में उसने मुझे मार दिया तो? चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तुम उसकी अच्छी दोस्त हो और पिछले एक महीने में तुमने उसकी काफी अच्छे से देखभाल भी की है। वो ये सब नहीं सोचता। वो किस तरह का इंसान है तुम अच्छे से जानती हो। अगर उसे गुस्सा आया और मेरी सच्चाई पता चली तो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा कि मैंने उसके लिए क्या कुछ किया है। जो भी हो जाए, मैं अब उसके घर नहीं जाऊंगी, दिव्याना ने घबराकर कहा। उसे वहां जाने में डर महसूस हो रहा था। लावण्या ने उसके डर को समझ सकती थी। उसने उसके हाथ को सहलाकर कहा, तुम्हारी बात भी सही है और मैं तुम्हारे डर को समझ सकती हूँ। ऐसा करो, आज रात तुम मेरे यहाँ ही रुक जाओ, मैं विधिक को कुछ भी बहाना बना दूंगी। सुबह तक उसका मूड ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी। दिव्याना ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि विधिक का कॉल आया। लावण्या ने इशारे से दिव्याना को शांत रहने का कहा और विधिक का कॉल पिक किया। दीप्ति, कहाँ हो तुम दोनों? रात के 12 बज रहे हैं। मैंने तुम दोनों को बाहर घूमने का कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों पूरी रात ही बाहर रहो। विधिक उनसे काफी सामान्य तरीके से बात कर रहा था, मानो उसके घर कुछ हुआ ही ना हो। वो सर, मैं मैम को मेरे घर ले आई थी, वो काफी थक गई थी। क्या आज रात वो मेरे घर पर रुक सकती है? लावण्या ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। तुम किससे पूछकर उसे अपने घर लेकर गई? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तुम दोनों का खाना पीना और घूमने का हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। तुम अभी के अभी शिवांगी को मेरे घर छोड़कर जाओगी। लावण्या के जवाब का इंतजार किए बिना ही विधिक ने कॉल कट कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर दिव्याना और घबरा गई। उसने परेशान स्वर में कहा, अब तो सच में मुझे डर लग रहा है। ये पहले मुझे घर से बाहर भेजना चाहता था और अब जबरदस्ती घर बुला रहा है। कहीं रॉबिन की तरह वो मुझे भी गोली तो नहीं मार देगा ना? तुम इतना डर क्यों रही हो और तुम भूल क्यों रही हो कि तुम कौन हो? इस तरह की हजारों सिचुएशंस के लिए तुम्हें अच्छे से ट्रेन किया गया है। अगर तुम्हें ये लगे कि उसे तुम्हारा सच पता चल गया है तो तुम उसका काउंटर अच्छे से कर सकती हो, लावण्या ने कहा। दिव्याना ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वो सही कह रही थी। इस तरह की सिचुएशन में दिव्याना पहले भी आ चुकी थी और उसने पूरी बहादुरी से उनका सामना किया था। यही वजह थी कि उसे वहाँ जाने के लिए चुना गया। शिवांगी का रोल अदा करते हुए एक पल के लिए मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और खुद को वही मासूम भोली भाली लड़की समझने लगी जो कुछ नहीं कर सकती। चलो चलते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। लावण्या की बातों से उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया और वो विधिक के घर जाने के लिए तैयार थी। वहाँ जाने से पहले लावण्या ने अपने लैपटॉप से विधिक के घर जो भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग को हार्ड ड्राइव में सेव किया और एक सेफ जगह पर छुपाकर दिव्याना के साथ विधिक के घर जाने के लिए निकल पड़ी। अगर उसे सच का पता भी चल जाए तो थोड़ी देर नॉर्मल रहने की कोशिश करना, जब सिचुएशन हाथ से निकले तभी काउंटर करना। घर के अंदर जाने से पहले लावण्या बोली, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुमने शॉपिंग कर ली थी, वरना उसे लगता कि हम दोनों ने इतने टाइम क्या किया होगा। दिव्याना ने जवाब दिया। उन दोनों के हाथ में बहुत सारे कैरी बैग्स थे जिनमें काफी सारा सामान था। विधिक के फ्लोर पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। विधिक ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। लावण्या और दिव्याना अंदर आईं। घर का माहौल बिल्कुल शांत था और वहां हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। लावण्या ने फर्श की तरफ देखा तो वो भी बिल्कुल साफ था। मानना पड़ेगा ये हर एक काम बहुत सफाई से करता है, इसने यहाँ सब कुछ निपटा दिया है, तभी शिवांगी को घर लाने का बोला होगा। विधिक ने लावण्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें इसे घुमाने के लिए कहा था, ना कि अपने घर ले जाने के लिए। आगे से मुझसे बिना पूछे कुछ भी मत करना। सॉरी सर, मुझे लगा मैम यहाँ अकेले फील करती है तो मैं इन्हें अपनी फैमिली से मिला दूँ, लावण्या ने नीची नजरें करके कहा। रात काफी हो गई है, तुम जाओ। विधिक ने जवाब में इतना ही कहा। दिव्याना को वहीं छोड़कर लावण्या वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद विधिक सोने जाने लगा। तभी दिव्याना ने उसे रोकते हुए कहा, आपका डिनर कैसा रहा? बस ठीक ठाक ही था, मैंने तुम्हें मिस किया। आपने हमें इतना ही मिस किया था तो बाहर क्यों भेजा था? हम भी बाहर बहुत बोर हो गए थे। तभी दीप्ति को बोला कि अपने घर लेकर चले। आपने खामखा उसे डांट दिया। शिवांगी ने लावण्या को बचाने के लिए झूठ बोला। ठीक है, आगे से तुम भी ऐसे कहीं मत जाना। तुम अच्छे से जानती हो मेरा काम क्या है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम किसी खतरे में आओ। रात काफी हो गई है, तुम भी थक गई होगी, जाकर सो जाओ। विधिक ने जवाब दिया और अपनी व्हीलचेयर खिसकाता हुआ अपने कमरे में ले गया। विधिक के अच्छे बर्ताव को देखकर दिव्याना ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में सोने चली गई। वहां जाने से पहले विधिक के घर जो भी हुआ उसके रिकॉर्डिंग को हार्ड ड्राइव में सेव किया और एक सेफ जगह पर छुपाकर दिव्याना के साथ विधिक के घर जाने के लिए निकल पड़ी। अगर उसे सच का पता भी चल जाए तो थोड़ी देर नॉर्मल रहने की कोशिश करना, जब सिचुएशन हाथ से निकले तभी काउंटर करना। घर के अंदर जाने से पहले लावण्या बोली, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुमने शॉपिंग कर ली थी, वरना उसे लगता कि हम दोनों ने इतने टाइम क्या किया होगा। दिव्याना ने जवाब दिया, उन दोनों के हाथ में बहुत सारे कैरी बैग्स थे जिनमें काफी सारा सामान था। विधिक के फ्लोर पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। विधिक ने उनके लिए दरवाजा खोला। लावण्या और दिव्याना अंदर आईं। घर का माहौल बिल्कुल शांत था और वहां हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। लावण्या ने फर्श की तरफ देखा तो वो भी बिल्कुल साफ था। मानना पड़ेगा ये हर एक काम बहुत सफाई से करता है, इसने यहाँ सब कुछ निपटा दिया है, तभी शिवांगी को घर लाने का बोला होगा। विधिक ने लावण्या की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें इसे घुमाने के लिए कहा था, ना कि अपने घर ले जाने के लिए। आगे से मुझसे बिना पूछे कुछ भी मत करना। सॉरी सर, मुझे लगा मैम यहाँ अकेले फील करती है तो मैं इन्हें अपनी फैमिली से मिला दूँ, लावण्या ने नीची नजरें करके कहा। रात काफी हो गई है, तुम जाओ, विधिक ने जवाब में इतना ही कहा। दिव्याना को वहीं छोड़कर लावण्या वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद विधिक सोने जाने लगा। तभी दिव्याना ने उसे रोकते हुए कहा, आपका डिनर कैसा रहा? बस ठीक ठाक ही था, मैंने तुम्हें मिस किया। आपने हमें इतना ही मिस किया था तो बाहर क्यों भेजा था? हम भी बाहर बहुत बोर हो गए थे। तभी दीप्ति को बोला कि अपने घर लेकर चले। आपने खामखा उसे डांट दिया। ठीक है, आगे से तुम भी ऐसे कहीं मत जाना। तुम अच्छे से जानती हो मेरा काम क्या है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम किसी खतरे में आओ। रात काफी हो गई है, तुम भी थक गई होगी, जाकर सो जाओ। विधिक ने जवाब दिया और अपनी व्हीलचेयर खिसकाता हुआ अपने कमरे में ले गया। विधिक के अच्छे बर्ताव को देखकर दिव्याना ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह आंशी अच्छे से तैयार होकर आर्टिस्टिक के ऑफिस पहुंची। वहां जाने से पहले मिस्टर जिंदल ने उसे जॉब छोड़ने के बारे में अमन से बात करने को कहा था। आंशी ने उन्हें तो हामी भर दी थी पर उसका जॉब छोड़ने का मन नहीं था। आंशी अर्जुन के साथ गाड़ी में आर्टिस्टिक के ऑफिस के आगे थी। वैसे देखा जाए तो शिव अंकल ने अच्छा डिसीजन लिया है, तुम्हारा एक्स यहीं पर है और पिछली बार उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया था। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ आंशी, और अमन से आज इस बारे में बात कर लेना, अर्जुन ने आंशी के वहाँ से निकलने से पहले कहा। आंशी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि तुम्हें कोई परेशान न करे। ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब जाओ, और काफी दिनों बाद ऑफिस जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। अर्जुन ने आंशी को बाय कहा और गाड़ी यू टर्न लेकर अपने ऑफिस को चला गया। आंशी अंदर जा रही थी तभी उसने देखा सामने पार्किंग एरिया से अमन और लावण्या साथ में आ रहे थे। आंशी को देखते ही लावण्या ने अमन का हाथ पकड़ लिया। हाथ तो इसका ऐसे पकड़ रही है जैसे मैं इसे अभी यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। आंशी ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। वो तेजी से अंदर जाने लगी तभी लावण्या ने उसे पीछे से आवाज देकर रोका। लावण्या और अमन आंशी के पास पहुंचे। तुम काफी दिनों बाद ऑफिस आई हो ना, आई होप तुम ठीक होगी, लावण्या ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, तभी यहाँ ऑफिस आई हूँ, लगता है मेरे जाने के बाद यहाँ काफी कुछ बदल गया, आंशी ने अमन की तरफ देखकर कहा। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, यहाँ बदला कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है। फिर उसने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, ऊपर चले बेबी। जवाब में अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने आंशी के सामने कुछ नहीं कहा और लावण्या के साथ ऊपर जाने लगा। आंशी अभी भी वहीं खड़ी उन दोनों को साथ में देख रही थी।
कैसा सीक्रेट एजेंट है ये, खुद को अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बचा पा रहा, इस देश को क्या खाक बचाएगा? इसे तो नौकरी से निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा पानी में लगा देना चाहिए। उन दोनों को साथ देखकर आंशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पैर पटकती हुई ऊपर जाने लगी। आंशी ऊपर अपने फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा उसकी डेस्क हटा दी गई थी, जो अमन के कैबिन के जस्ट बाहर लगाई गई थी। वहां लावण्या के काम करने के लिए अलग से ऑफिस था, जो अमन के कैबिन के बगल में था। अपनी डेस्क को वहां ना देखकर आंशी को काफी दुख हुआ। इसने तो मेरी डेस्क भी हटा दी, कल को मुझे भी हटा देगा। आंशी वहां खड़ी अमन के कैबिन की तरफ देख रही थी। अमन ने उसको बाहर देखा तो उसे मैसेज करके अंदर बुलाया। अंदर आते ही आंशी ने गुस्से में कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपनी मर्जी से छुट्टी थोड़ी ना ली थी, आपने खुद दी थी। आपने बाहर से मेरी डेस्क तक हटवा दी, कल को मुझे भी हटवा दोगे? अमन उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और कहा, क्या सुबह सुबह कोई डेली सोप देखकर आई हो जो ड्रामा कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम अब से मिस्टर सिंह के साथ काम करोगी। लवी वापस आ चुकी है और वो अपना काम काफी अच्छे से करती है। वो होती है तो मुझे ज्यादा काम देखना भी नहीं पड़ता। और मैं होती हूँ तब? आंशी ने अचानक पूछा। तब तुम्हारा काम भी मुझे करना पड़ता है। चलो अब मूड सही करो और मिस्टर सिंह के पास उनके फ्लोर पर जाकर काम करो, वो तुम्हें सब समझा देंगे। वो उससे काफी प्यार से बात कर रहा था। मुझे नहीं करना यहाँ काम, मैंने इसको ऑफिस में बॉस की सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया था, मैं वही काम करूंगी। आंशी का बचपना देखकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने आंशी के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया। अच्छा फिर ऐसा करता हूँ कि तुम्हें लवी का सेक्रेटरी बना देता हूँ, हम दोनों की पोजीशन सेम ही है इस ऑफिस में। ठीक है, मैं जा रही हूँ मिस्टर सिंह के पास। आंशी ने जल्दी से अपने कदम दरवाजे की तरफ लिए और वहाँ से चली गई। बिल्कुल पागल है ये लड़की, अमन ने हंसकर कहा। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन अपना बचपना कभी मत खोना, जैसा कि अक्सर लोग कर देते हैं। लावण्या अमन से मिलने के लिए उसके कैबिन में आ रही थी। उसने आंशी को वहां से बाहर निकलते देखा और फिर अमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उन दोनों को फिर से साथ देखकर उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा कर रहे हो? उसने अमन से पूछा। कुछ नहीं, वो मिस जिंदल की बातें ही ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बिल्कुल बच्ची है वो। एक पल के लिए अमन भूल गया कि वो लावण्या के सामने आंशी की तारीफ कर रहा था। उसकी बात सुनकर लावण्या ने अपने मन में कहा, नो डाउट ये लड़की ऐसी ही है, और अब तो मुझे 1% भी हैरानी नहीं हो रही कि इसने विधिक को अपने जाल में कैसे फंसाया होगा। जो भी हो, मैं तुम्हें इसकी बातों में नहीं आने दूंगी। अच्छा तुम यहाँ किस काम से आई थी? लावण्या को चुप देखकर अमन ने पूछा। मैं तुम्हें बताने आई थी कि कल के दिन की सारी तैयारियाँ हो गई हैं, तुम भी अपना शेड्यूल पूरी तरह फ्री रख लो, मैं नहीं चाहती पिछली बार की तरह कुछ भी पोस्टपोन हो। अमन ने उसकी बात पर हामी भरी। लावण्या की बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। उससे बात करने के बाद लावण्या वहाँ से जा चुकी थी। अंडरलाइन, आंशी का पूरा दिन मिस्टर सिंह के साथ काफी बोरिंग बीता। वो अमन को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऑफिस खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर को जाने लगे। तभी लावण्या आंशी के पास गई। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। ऑफिस आवर्स खत्म हो गए हैं, उसे वहाँ देखकर आंशी ने कहा। हाँ जानती हूँ, ये कुछ फाइल्स हैं, इन्हें रीड करके मंडे तक ले आना। लावण्या ने जबरदस्ती वो फाइल्स आंशी के हाथ में थमा दी। आंशी वहाँ जाने को हुई तभी लावण्या ने फिर कहा, मिस्टर सिंह के साथ तुम्हारा दिन कैसा बीता? अच्छा ही था। आंशी उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कम शब्दों में जवाब दिया। चलो अच्छा है, क्योंकि अब से तुम्हें उनके साथ काम करना है। आई होप यू विल एंजॉय, कहकर लावण्या वहाँ से जाने लगी। तुम नहीं जानती, लेकिन ये फाइल्स तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा देने वाली है मिस आंशी जिंदल। बस एक दिन, उसके बाद तुम हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओगी। लावण्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके मन में काफी कुछ चल रहा था। उन सबसे अनजान आंशी वो फाइल लेकर वहाँ से अपने घर को जाने लगी। 4 स्टार्स, पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।